वो बेचारे अपने घर से उड़कर बाहर नहीं जा सकते। देखे हैं ना पक्षी, हम लोग तो अपने भारतवर्ष में हमेशा देखते रहते हैं। इसमें उनके शरीर में पंख उगे नहीं रहते हैं, पंख बाद में उगते हैं पक्षियों के। पहले तो लाल लाल केवल चमड़ा जैसे रहता है, बहुत सुकोमल। पहले तो अंडा में रहते हैं और अंडा फूटता है, इसके बाद वो निकलते हैं अंडे में से। कई दिनों के बाद धीरे धीरे पंख उगते हैं, जब पंख डेवलप्ड हो जाते हैं तब वे उड़ते हैं। उड़ते हैं तो बहुत कम दूर जाते हैं, बहुत दूर नहीं जा सकते, लेकिन शुरू शुरू में तो कहीं उड़ ही नहीं सकते। अगर अपने घर से बाहर हुए तो गिर जाएंगे नीचे, इसलिए वो बहुत सतर्क रहते हैं, वो बाहर नहीं जाते हैं। यह सृष्टि की रीति है। मनुष्यों के बच्चे भी तो कहां पहले बाहर जाते हैं, बाहर जाने की बात तो दूर है, भीतर खड़ा भी नहीं होते हैं, बैठते तक नहीं है ना। और हम सब लोगों का जन्म इसी तरह से हुआ है, लेकिन आज तो भूल गए हम लोग कि हम इस तरह से बच्चा थे, कि बच्चे को आप बैठा नहीं सकते। बैठना कई दिनों के बाद लड़का सीखता है, धीरे धीरे पकड़ पकड़ करके मां बैठाती है, चाहे कोई दूसरी बच्ची, तो हमेशा लेटे लेटे। और वो लेटने में भी हमेशा उतार, करवट नहीं बदल सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। तो पक्षियों के जो पंखहीन बच्चे होते हैं वो इस तरह से पूर्ण रूप से अपने मां पर आश्रित रहते हैं, और मां या पिता बाहर जाते हैं उड़ करके, और वो कोई फल कीट पतंग चुन करके लाते हैं तो बच्चों के चोंच में देते हैं खाने के लिए। तो वे बच्चे कभी कभी क्या होता है कि जब माता पिता बाहर रहते हैं, मादा पक्षी और नर पक्षी जो बाहर रहते हैं, तो कभी कभी घूक बोलते हैं, घू घू करोती थी घूक, जैसे उल्लू उल्लू बोलते हैं तो कांप जाते हैं बच्चे। यद्यपि उल्लू उनको मारने नहीं आता है, लेकिन उसकी आवाज सुन करके उनका कलेजा दहल जाता है। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, अगर पंख होते तो उड़ करके भाग जाते हैं, लेकिन उल्लू की आवाज सुनते हैं। और कभी कभी उनको भूख लगती है, तो भूख लगती है तो कहीं जा नहीं सकते, उड़ नहीं सकते, तो वे मां की प्रतीक्षा करते हैं। अजात पक्षा इव मातरम खगा, अजात खगा खगा मातरम इव। तो जरा विचार कीजिए कि छोटे छोटे बच्चे पक्षियों के कितनी तत्परता से मां की प्रतीक्षा करते होंगे, कब मां आएगी, हमको उल्लू से बचाएगी, उससे बचाएगी और हमारे लिए भोजन लाएगी। तो कभी कभी मां नहीं आती है, अगर हवा जोर की चलती है, पत्ते आपस में खड़खड़ाते हैं, तो बेचारे पक्षी ये सोचते हैं बच्चे की मां आ गई, तो ऐसे भी वो चोंच खोलते हैं। उनको पता नहीं होता है कि मां नहीं है, वो पत्तों की खड़खड़ाहट को सुनकर के चोंच खोलते हैं कि मां आ गई, मां आ गई। वो प्रतीक्षा करते रहते हैं कि मां आएगी तो हमारा पोषण करेगी, हमको खिलाएगी पिलाएगी। वो बेचारे जा नहीं सकते, साधनहीन है, पंख नहीं है, कुछ नहीं है। तो जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपने मां की प्रतीक्षा करते हैं, इसी तरह हे कृष्ण, मेरा मन आपको देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है, छटपटा रहा है। जो इस दृष्टांत से भी संतोष नहीं हुआ वृत्रासुर को, तो दूसरा दृष्टांत दे रहे। स्तन्यम जथा वत्स तरह क्षुधारता, जैसे वत्स तरह गाय के बिल्कुल नए जन्मे हुए छोटे छोटे बच्चे बंधे रहते हैं घर पर, लेकिन क्षुधारता भूख से व्याकुल होकर के जैसे अपने मां की प्रतीक्षा करते हैं, वैसे मेरा मन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। इस दृश्य को भी देखे हैं हम लोग। इधर तो कोई ज्ञान ही नहीं हो सकता आदमी को, कभी बछड़ा देखा ना गाय देखा, बस वही कुत्ता लेकर घूम रहा है, उसको क्या ज्ञान होगा। घर पर बंधा हुआ बच्चा गाय का कितना बोलता है, रोता है गाय मां के लिए, इसको कोई देखेगा तब तो भगवत समझेगा ना। केवल डॉग लेकर घूमा है वो क्या समझेगा इस बात। श्रीमद् भागवतम में जितने भी दृष्टांत हैं 95% गांव के हैं, गांव के लोग भागवत बहुत जल्दी समझ सकते हैं। यह बिल्कुल सत्य बात, कम से कम जो इन दृश्यों को जो देखे हैं तो समझ सकते हैं। तो हम लोग देखे हैं गऊ को चराए भी हैं, बछड़े सहलाए, दूहे, तो सब समझ में सारी बातें आ रही है कि नए बच्चे किस तरह मां की प्रतीक्षा करते हैं। मां चाहती है कि बच्चे के पास रहे, गाय चाहती है कि मां बच्चे के पास रहे, लेकिन बच्चे के पास रहने से तो उसका पेट भरेगा नहीं, तो इसीलिए उसको जबरदस्ती हाँक करके ले जाते हैं खेत में। वो जाना नहीं चाहती है, बच्चे से बहुत स्नेह होता है उसका, लेकिन वो जाती है उधर, वो भी रंभाती रहती है, बोलती है, और इधर बच्चे को भी बांध करके रखा जाता है, तो बच्चा भूखा हो जाता है, शुरू में बिल्कुल घास नहीं खाता है, तो माँ के दूध की आशा से वो रोता रहता है, बीच बीच में बोलता रहता है, प्रतीक्षा करता रहता है और सोचता है माँ आएगी तो मैं उसका स्तन्यम, स्तन्यम का अर्थ है स्तन का दूध, मैं उसके दूध को पीऊंगा, ये भी अपेक्षा करता है बच्चा कि माँ मुझे चाटेगी, सहलाएगी, मैं माँ का दूध पीऊंगा। तो हे श्री कृष्ण, जिस तरह गायों के छोटे छोटे बच्चे अपने मां की प्रतीक्षा करते हैं, उस तरह से मेरा मन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन देखिए दोनों में परवशता है, पक्षी के पाख नहीं उड़े हैं, वो साधनहीन है। इसी तरह वृत्रासुर के कहने का मतलब है कि मुझमें कोई साधन नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, मैं आपको पा नहीं पाऊंगा अपने साधन से, मुझमें कोई शक्ति नहीं है। लेकिन जैसे पक्षी के मां स्वयं ही उड़ करके आती है और गाय स्वयं आती है तब बछड़े सुखी हो जाते हैं, उसी तरह से जब आप कृपा करेंगे तब भी मैं आपको प्राप्त कर सकूंगा, मैं मुझमें कोई शक्ति नहीं है। दृष्टांत द्वारा यह झलक रहा है, बछड़ा खूंटा में बंधा है, रस्सी से बंधा है, पक्षी का तो पंख ही नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकते। अगर बछड़े में बंधन न हो तो हो सकता है धीरे धीरे भाग करके माँ के पास पहुंच जाए, लेकिन बंधन लगा हुआ। अच्छा, फिर तीसरा दृष्टांत दे रहे हैं, प्रियं प्रियेव विसुतं विषण्णा मनोरविन्दाक्षुद्रीक्षते त्वाम्। जैसे प्रिया, प्रिया शब्द का अर्थ है पत्नी, और विशेष करके पतिव्रता स्त्री, उसको प्रिया कहा जाए। जैसे कोई प्रिया परदेश में गए हुए अपने प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, बेचारी घर से बाहर नहीं जा सकती, और मान लीजिए उसका पति परदेश गया है, उसका प्रियतम परदेश गया है, तो बेचारी कभी कभी सोचती है कि कौन खिलाता होगा उनको, कौन चरण संवाहन करता होगा, मसाज करता होगा, बहुत दुखित होंगे। तो पतिव्रता स्त्री है इसलिए वो यही सोचेगी, यदि मेरे साथ होते तो मैं भोजन बनाती, खिलाती, कपड़ा साफ करती और सब करती, उनके चरण दबाती, पंखा झलती, इस तरह से मैं प्रियतम को सुख देती। लेकिन व्युषितम, व्युषितम कार्य से दूर देश गतम, प्रियतम दूर देश में गए हैं जहां वह पत्नी जा नहीं सकती है, तो बेचारी क्षण क्षण में प्रतीक्षा करती है कि पति का कब आगमन होगा, कब आएंगे, जब आएंगे तो मैं उनको सुखी करूंगी, ये करूंगी, और उनके साथ मिल करके मेरा सारा दुख दूर हो जाएगा। तो जैसे परदेश में गए हुए अपने प्रियतम पति की पतिव्रता पत्नी प्रतीक्षा करती है, हे प्रियतम, उसी तरह मेरा मन आपसे मिलने के लिए छटपटा रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। अभी प्रश्न उठता है कि काम एक ही करना है, भगवान से मिलने की लालसा, लेकिन तीन दृष्टांत क्यों दे रहे हैं? अवश्य इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि एक दृष्टांत सफिशियंट नहीं था पहले। तो हमारे आचार्यगण बताते हैं, जीव गोस्वामीपाद जी इस पर टीका लिखे हैं, तो कहते हैं कि पहले दृष्टांत में वृत्रासुर जी ने देखा एक अभाव, पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपने मां की प्रतीक्षा करते हैं तो वे मां से चाहते हैं, मां के शरीर से उनको बहुत मतलब नहीं होता है, मां अपने चोंच में जो कीट पतंग या फल लाती है उसकी प्रतीक्षा करते हैं, मां मुझे कब खिलाएगी। तो इसलिए वृत्रासुर जी को इस दृष्टांत से असंतोष हो गया, नहीं ये ठीक नहीं, मैं श्री कृष्ण से कुछ चाहता नहीं, ऐसा नहीं है कि वो कृष्ण ला करके हमको ये दें ये करें, नहीं, इसीलिए वो इस दृष्टांत से असंतुष्ट हो गए। पहले दृष्टांत दिए तब असंतुष्ट होकर के दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं। तो याद रखना चाहिए कि पक्षियों के जो बच्चे होते हैं वे मां के शरीर की चीज नहीं लेना लेते हैं, वो शरीर से बाहर का कीड़ा चाहे फल कुछ लेते हैं। तब वृत्रासुर जी को यह ध्यान है कि नहीं नहीं, मैं इस तरह से श्री कृष्ण से कोई धन संपत्ति और बाहर की चीज नहीं लेना चाहता, नहीं तो श्री कृष्ण से मतलब है। तब उन्हें स्मरण आया कि वत्सतरा सुधारता मातरमिव, जैसे गायों के छोटे छोटे बच्चे भूख से व्याकुल होकर के अपने मां की प्रतीक्षा करते हैं, उस तरह से मेरा मन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। इस दृष्टांत पर उन्हें कुछ संतोष हुआ, क्योंकि गाय का बच्चा गाय के भीतर का दूध चाहता है, गाय से बाहर की सामग्री वो नहीं चाहता। कम से कम ये बेटर दृष्टांत है कि गाय के थन से दूध निकलता है, तो बच्चा जो भी चाह रहा है वो गाय के शरीर से संबंधित वस्तु ही चाहता है, वह भी चाहता है कि मां मुझे चाटेगी मुझे सहलाएगी। तो इस प्रकार इस दृष्टांत में पहले दृष्टांत से विशेषता है, लेकिन फिर भी वृत्रासुर जी ने सोचा यह ठीक नहीं है, गाय का बच्चा भी मां के दूध को पी करके कभी कभी संतुष्ट हो जाता है और फुदकने लगता है घूमने लगता है, गाय की अपेक्षा नहीं रखता है। देखे ना, जब पेट भर जाता है तब वो गाय से दूर खेलने लगता है, उस समय गाय से मिलने की उसकी उत्कंठा शांत हो जाती है। तो वृत्रासुर जी को इस दृष्टांत से भी असंतोष हो गया, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं हूं कि श्री कृष्ण के देह से ही श्री विग्रह से ही कुछ पा करके और मैं संतुष्ट हो जाऊं। तब उन्होंने तीसरा दृष्टांत दिया, इस पर उन्हें संतोष हो गया। जो परदेश में गए हुए अपने प्रियतम पति की पत्नी प्रतीक्षा करती है, तो वह यदि पतिव्रता है तो पति से अपेक्षा नहीं करती, उसकी इच्छा केवल सेवा करके उनको सुखी करने की होती है। वो सोचती है कि आएंगे तो मैं इस तरह से उनको बनाऊंगी खिलाऊंगी चरण संवाहन करूंगी या पंखा झलूंगी, इस प्रकार से उनसे बातें करूंगी को सुखी करूंगी और वे हमको सुखी करेंगे। तो इस तरह से पत्नी के मन, पतिव्रता पत्नी के मन में अपने पति के सुख की ही इच्छा रहती है, उनसे सुख पाने की इच्छा उसको नहीं रहती। इस दृष्टांत से वृत्रासुर जी का मन संतुष्ट हो गया, ये ठीक है। इसलिए तीन तीन दृष्टांत दिए, अजात पक्षा यो मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्स तरह सुधारता प्रियम प्रिय व विशुतम विसंडा मनोरविंदाक्ष दीर्घते त्वाम। परदेश में गए हुए अपने पति की चिंता करके पतिव्रता स्त्री विसंगड़ा विषाद में भरी रहती है। हां, तीनों दृष्टांतों में परवशता है, साधक की ओर से बंधन है, वो बेचारी स्त्री नहीं जा सकती अपने पति से मिलने के लिए, उसके पास इतना साधन नहीं कुछ नहीं, और सामाजिक भी छूट नहीं होती है कि वो जहां तहां जाए। तो यह परवशता है, बछड़ा भी खूंटे में बंधा हुआ है और पक्षियों के पंख नहीं होते हैं। तो इस तरह से वृत्रासुर कह रहे हैं कि हे प्रियतम, मुझ में कोई शक्ति नहीं है, साधन नहीं है, मैं बहुत दुखी हूं। जैसे पक्षी के बच्चे दुखी रहते हैं, बछड़े दुखी रहते हैं, प्रियतमा पत्नी दुखी रहती है, उस तरह से मैं बहुत दुखी हूं आपके लिए, और मैं आपको चाह रहा हूं, आपसे कब भेंट होगी, कब मैं आपकी सेवा करूंगा, मेरी यही लालसा है, मेरी लालसा को कृपया आप पूरा कीजिए। इन तीनों दृष्टांतों से वृत्रासुर जिस समय बोल रहे होंगे कि मेरा मन छटपटा रहा है आपको देखने, उस समय सारे देवता और इंद्र वृत्रासुर को देख रहे थे कि री बाप कितनी भक्ति। भगवान इंद्र तो हाथ में वज्र लिए लिए इतनी प्रशंसा किए हैं वृत्रासुर की, तो आगे के प्रसंग बारहवें अध्याय में वो प्रसंग है, बहुत प्रशंसा करने लगे। और अब उनको जो पहले मारने का थोड़ा विचार भी था बिल्कुल नहीं रहा, अब तो एक प्रकार से निश्चय कर ले कि नहीं किसी भी तरह से इस महावैष्णव का मैं वध नहीं कर सकता, क्योंकि इंद्र सब मिलाकर भक्त हैं भगवान के, एक दूसरे महान भक्त का वध कैसे कर सकते थे। वृत्रासुर जी की प्रार्थना वे बड़े ध्यान से सुन रहे थे और वृत्रासुर बिल्कुल स्वभाव से आविष्ट थे, वे इस बात को भूल चुके थे कि वे युद्ध भूमि में खड़ा है, इसका उनको बिल्कुल स्मरण नहीं था कि वे कहां है, वो तो डायरेक्ट भगवान से बात कर रहे थे। ये तीन दृष्टांत बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर हमारे आचार्यों ने बहुत सुंदर विस्तार से टीकाएं लिखा है। एक मगध यूनिवर्सिटी में गया जी में बहुत बड़े प्रोफेसर हो गए भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव, तो उनसे एक बार पूछा गया कि मान लीजिए आपको एकाएक ये ऑर्डर दिया जाए कि आप भागवत के केवल एक श्लोक को पढ़ सकते हैं और नहीं पढ़ने दिया जाएगा, तो आप कौन श्लोक चुनेंगे? तो उन्होंने कहा था कि मैं इसी श्लोक को चुनूंगा, अजात पक्षायो मातरम खगा स्तन्यम यथावत सतरा सुहा प्रियम प्रिय व विषतम विषाणा मनोरबिंदाक्षत दीक्षते त्वाम। बहुत बड़े बड़े लोगों ने भागवत की बहुत महिमा कही है। भगवान चैतन्य महाप्रभु पांच साधनों में श्रीमद् भागवत के अर्थ का आस्वादन कहते हैं। श्रीमद् भागवत के कथा का आस्वादन कोई व्यक्ति करे तो अपने आप कृष्ण प्रेम डेवलप्ड हो जाएगा, ये महासाधन है। लेकिन अर्थ का आस्वादन होना चाहिए, और इसके विषय में मैं पढ़ा हूं कि जब महात्मा गांधी भागवत सुने बनारस में मदन मोहन मालवीय जी के मुख से, तो गांधी जी ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैं संस्कृत और क्यों नहीं पढ़ा। जब मदन मोहन मालवीय जी के मुख से उन्होंने कथा सुना भागवत का, तो वो पछताने लगे कि यदि मुझे शुरू में भागवत का पता होता तो मैं संस्कृत और पढ़ा होता, मैं प्रतिदिन बहुत देर तक भागवत पढ़ता रहता। तो उस समय तो ये वृद्ध हो चुके थे। मदन मोहन मालवीय जी जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाए हैं वे भागवत कहते थे, तो गांधी जी का फोटो भी है किस तरह मदन मोहन जी बैठे हैं उनके साथ। तो भागवत सुन करके उनको बहुत अफसोस हो, पहले ये पता ही नहीं था इस राष्ट्र का कि इतना बड़ा खजाना ये है। श्रील प्रभुपाद जी इस ग्रंथ पर पूर्ण विश्वास करते थे और इसी को लेकर के वे अमेरिका आए। भागवत के प्रथम स्कंद के तीन खंडों को भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार ने जयदयाल डालमिया ट्रस्ट से प्रिंट कराया। प्रभुपाद जी उनसे निवेदन किए थे कि हम हमारा एक ग्रंथ प्रिंट कर दीजिए, तो भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने उसको प्रिंट कराया, एक जयदयाल डालमिया ट्रस्ट है, आज भी है, तो उसने आर्थिक सहायता किया भाई जी के कहने से। तो प्रभुपाद जी वो तीन खंड भागवत लिए अपने बक्से में, और अमेरिका पहुंचने पर जब यहां के लोगों की दशा उन्होंने देखा तो उस समय उन्होंने एक गीत लिखा है छोटा सा बंगला में। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, उसका आशय यह है कि हे कृष्ण हमको क्यों यहां लाए, किला भी अनिला है था कर एवे गति, क्यों हमको लाए, हम यहां क्या कर पाएंगे, जब यहां के लोगों का खान पान देखे पशु से भी बदतर, पशु भी इतने गिरे हुए नहीं होते। उन्होंने देखा कि हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हमको क्यों आप लाए,